पृष्ठ संख्या 19। दक्षिणी उर्दू साहित्य के विकास को भली भांति समझने के लिए हम उसको कई युगों में विभाजित कर सकते हैं। पहला युग जो पूर्णतः धार्मिक साहित्य से भरा हुआ है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और उसका समय बाह्मनी राज्य के अंत तक फैला हुआ है। जो व्यक्ति भारत का थोड़ा बहुत इतिहास भी जानता है, उसे ज्ञात होगा कि 15वीं शताब्दी का अंत होने से पहले ही बाह्मनी राज्य टूट फूट कर 5 भागों में विभाजित हो गया था। साहित्य निर्माण की दृष्टि से उनमें से बीजापुर और गोलकुंडा को बहुत महत्व प्राप्त है। बीजापुर में आदिलशाही राज्य स्थापित हुआ और गोलकुंडा में कुतुबशाही। इन दोनों राज्यों में साहित्य और कलाओं की बड़ी उन्नति हुई। बादशाहों से लेकर साधारण लोगों तक में कविता और साहित्य की रुचि दिख पड़ती है। इस प्रकार हम बीजापुर और गोलकुंडा में विकसित होने वाले उर्दू साहित्य को उसकी उन्नति का दूसरा युग कह सकते हैं। यह दोनों राज्य जिस प्रकार एक साथ स्थापित हुए थे, उसी प्रकार एक ही साथ मुगल सम्राट औरंगजेब के हाथों मुगल राज्य का एक अंग बन गए। इसके पश्चात तीसरा युग वह कहा जाता है जिसमें मुगल राज्य के प्रभुत्व से उर्दू साहित्य का एक बड़ा कोष एकत्र हो गया। इन तीनों युगों की कहानी यदि विस्तार में कही जाए तो बहुत फैल जाएगी और एक साधारण पाठक के लिए नीरस भी होगी, परंतु जो कोई भी उनका अध्ययन करेगा उसे केवल उर्दू साहित्य के भविष्य की रूपरेखा का अनुमान लगाने ही में मदद नहीं मिलेगी, बल्कि इस बात का अनुभव भी होगा कि किस भाषा में राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव के कारण किस प्रकार परिवर्तन होते हैं। यह भी देखा जा सकेगा कि भाषा के प्रारंभिक काल में जो सरलता होती है वह किस प्रकार धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और विचारों की जटिलताएं उसे कैसे दूसरे मार्ग पर डाल देती हैं। जो लोग इस परिवर्तन को आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं देखते, वह यह समझते हैं कि ऐसा जानबूझकर किया गया है, परंतु सच यह है कि लेखक जिन साहित्यिक परंपराओं से प्रेरणा लेते हैं, उन्हीं का प्रभाव भाषा और साहित्य के रूपों पर भी पड़ने लगता है। उर्दू के लिए भी यही हुआ। भाषा ने जब बोलचाल की सीमाओं से बाहर निकलकर साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया तो उसे प्रचलित साहित्यों की भी दृष्टि में रखना पड़ा। इसी प्रकार भाषा में परिवर्तन होता है। कुछ के अर्थ भाव को स्पष्ट करने में असमर्थ लगने लगता है। बदलती हुई अवस्था में नए नए शब्द इधर उधर से लिए जाते हैं और बनते भी हैं। इसलिए दक्षिणी उर्दू और आज की उर्दू में बड़ा अंतर दिखाई देता है। दूर होते हुए भी उस समय की उर्दू बोलचाल की भाषा से निकट थी, इसलिए उसमें चाहे साहित्य की दृष्टि से कोई उच्च कोटि की चीज ना मिले, परंतु भाषा विज्ञान का अध्ययन करने वालों के लिए इसका विवेचन अत्यंत लाभदायक होगा। पृष्ठ संख्या 20। सबसे पहला नाम जिसे दक्षिणी उर्दू साहित्य का आरंभ किया जा सकता है, ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज का है। वह दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी फकीर निजामुद्दीन औलिया के खलीफा ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहली के प्रमुख शिष्य और खलीफा थे। खलीफा का अर्थ मुख्य शिष्य अथवा गद्दी पर बैठने वाला होता है। उनके मानने वालों की संख्या उत्तरी भारत में बहुत थी, परंतु अपने मत का प्रचार करने के लिए सन 1399 ईस्वी के लगभग गुलबर्गा, वर्तमान में कर्नाटक प्रदेश में है, चले आए और वहीं रह गए। गेसुदराज बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। फारसी अरबी में उनकी कई प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। दक्षिण में भी उनका बड़ा नाम हुआ और उनके मानने वालों की संख्या बढ़ने लगी। अपने समुदाय और साधारण जनता के लिए वह अपने विचार हिंदी में प्रकट किया करते थे। उन्हीं की सुविधा के लिए उन्होंने उस भाषा में कुछ लिखा भी, पर निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि हिंदी, उर्दू या दक्षिणी में उनकी रचनाएं हैं। कोई 50 वर्ष पूर्व उनकी एक पुस्तक मेराजुल आशकीन मिली और उसे उर्दू की पहली गद्य पुस्तक मानकर प्रकाशित किया गया। कई विद्वानों को इसमें संदेह है कि यह स्वयं गेसुदराज की रचना है, बल्कि यह समझा जाता है कि उनके विचारों को कुछ दिन बाद किसी अन्य व्यक्ति ने संग्रहित किया। जो पुस्तक प्रकाशित हुई है उसकी कई पांडुलिपियाँ और मिल गई हैं जिनमें बहुत अंतर है। इसके अतिरिक्त उनकी दो छोटी छोटी पुस्तकें और मिल गई हैं, शिकारनामा और तिलावतुल वजूद। इसमें पहली पुस्तक प्रकाशित भी हो चुकी है। लगभग आठ आठ पुस्तकें उनके नाम से संबंधित की जाती हैं, किंतु किसी के विशेष में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह उन्हीं की उर्दू कृतियां हैं। यशोदराज की पुस्तकों की भाषा खड़ी बोली है, जिस पर पंजाबी और ब्रज का प्रभाव भी दिखता है। शिकारनामा का विषय वस्तु और शैली उस काल के महाराष्ट्रीय संतों से भी प्रभावित जान पड़ती है। इन कृतियों में सगुण एवं निर्गुण विचारधाराओं को इस्लामी सूफी मत की शब्दावली में प्रस्तुत किया गया है। यदि मेराजुल आशकीन को उन्हीं की पुस्तक मान लें तो यह उर्दू की पहली पुस्तक कही जाएगी जो 1422 ईस्वी के पूर्व लिखी गई। इस छोटी सी रचना का विषय धर्म और भक्ति का गूढ़ ज्ञान है, इसी कारण इसमें अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग बहुत किया गया है। इसकी शैली में एक प्रकार की दार्शनिक जटिलता है, इसलिए इसका समझना बहुत आसान नहीं है। उदाहरण यह है, नबी कहे तहकीक के दरमियान के 17,000 पर्दे, उजियाले के हौर अंधियारे के, अगर उसमें ते एक पर्दा उठ जाए तो उसकी आँच ते मैं जलूं। उर्दू गद्य की नहीं, पद्य की कुछ रचनाएं भी उनके नाम से संबद्ध की जाती हैं, परंतु विश्वस्त रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, सबसे अधिक विचारणीय बात यह है कि यशोदराज के परिवार में कई ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने इसी भाषा में इसी प्रकार की और रचनाएं की। पृष्ठ संख्या 21। संक्षेप में उनका और अन्य लेखकों का उल्लेख किया जाता है। यशोदराज के पोते अब्दुल्ला हुसैनी सुविख्यात सूफी थे। उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक निशातुल इश्क का अनुवाद उर्दू में किया। उसी समय के एक कवि निजामी ने एक मसनवी कदम राव और पदम लिखी। इस प्रकार उर्दू साहित्य का आरंभ तो हो गया, परंतु उसकी वास्तविक उन्नति बीजापुर और गोलकुंडा की उन्नति के साथ हुई। यह युग उत्तरी भारत में मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर, तुलसी और सूर के प्रकाशमान होने का है, जिनके अभिव्यक्ति की भाषा अवधी और ब्रज थी। खड़ी बोली अपने क्षेत्र से निकलकर उस समय कुछ ऐतिहासिक कारणों से दक्षिण भारत में अपने लिए एक स्थान बना रही थी। दक्षिण में जिस साहित्य का विकास हो रहा था और उसमें जिस संस्कृति का रंग झलकता था, उस पर भारतीयता की गहरी छाप थी। वहाँ के कवियों की रचनाएं स्थानीय रंग से मालामाल हैं। अपने केंद्र से दूर उर्दू जो उन्नति कर रही थी, उसके कई कारण जान पड़ते हैं। सबसे बड़ा कारण यह मालूम होता है कि दक्षिणी राज्यों के सम्राट दिल्ली से दूर रहकर केवल एक स्वतंत्र और स्वाधीन राज्य की स्थापना करने ही के लिए उत्सुक न थे, बल्कि कला कौशल, साहित्य, रहन-सहन और जीवन के अन्य क्षेत्रों में अपना मार्ग अलग बनाना चाहते थे। इसके लिए वह साधारण जीवन के निकट गए। इसमें संदेह नहीं कि भिन्न भिन्न दक्षिणी राज्यों के शासक भी भारतवर्ष के बाहर की जातियों से संबंध रखते थे, परंतु उन्होंने मुगल सम्राट अकबर से पहले ही हिंदुओं के साथ आपस की शादी विवाह और नातेदारी से मित्रता के सूत्र को प्रबल बनाना चाहा। इसके अतिरिक्त तो उनके कई परिवार चिरकाल में दक्षिण में बस जाने के कारण वहाँ के रहन-सहन और रीति रिवाज से पूर्णतः परिचित थे। एक और कारण जिसकी ओर संकेत करना आवश्यक है, यह है कि एक निरंकुश शासन में बहुत कुछ बादशाह की इच्छाओं पर निर्भर होता है। वह जिस प्रकार के कला कौशल को पसंद करते हैं, जनता में उसी प्रकार का प्रचार होने लगता है। उसकी व्यक्तिगत इच्छाएं राजदरबार से संबंध रखने वाले कर्मचारियों और कवियों पर छा जाती हैं। दक्षिण के कई बादशाहों ने स्वयं उर्दू, ब्रज और तेलुगु में लिखना अपने लिए गर्व की बात समझा। इसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ के कवियों ने भी भारतीय भाषाओं में अपने विचार प्रकट किए। इतिहासकारों ने यह कारण भी बताया है कि भारत पर उत्तर पश्चिम से जो आक्रमण होते थे, उनका दबाव दक्षिणी भारत तक आते आते समाप्त हो जाता था। इसलिए वहाँ कला कौशल को उन्नति करने के अधिक अवसर प्राप्त हुए। इस प्रकार वहाँ के लेखक और कलाकार थोड़ा बहुत ईरानी प्रभाव से बच जाते थे और अपने ही साधनों से काम लेकर अपनी ही भाषा का प्रयोग करते और उसी में रचनाएं तैयार करते थे। यूँ हम देख सकते हैं कि दिल्ली से दूरी राज कार्यालय का हिंदुस्तानी भाषा में काम करना, हिंदू मुसलमानों के मेल जोल, पृष्ठ संख्या 22, शांति, सूफी फकीरों की उपस्थिति और अन्य कारणों ने दक्षिण में उर्दू को फलने फूलने का महत्वपूर्ण अवसर दिया। जब बाहमनी राज्य के टुकड़े हो गए तो आदिल शाही वंश ने 1490 ईस्वी में बीजापुर में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया, जिसमें 8 बादशाह हुए। इनमें से कई अत्यंत विद्वान एवं कुशल प्रशासक सिद्ध हुए। वह स्वयं सुयोग्य थे तथा अपने दरबार के महान विद्वानों की संगति में आनंद प्राप्त करते थे। अभी सूफी फकीरों का युग भी समाप्त नहीं हुआ था, अतएव एक महत्वपूर्ण नाम शाह मीरा नजी का मिलता है, जो अपनी भक्ति और योग्यता के कारण शमसुल उशक भक्तों का सूर्य कहे जाते थे। वह सन 1497 ईस्वी तक जीवित रहे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई रचनाएं उर्दू में की, जिसके अध्ययन से उस समय की भाषा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उनकी सभी रचनाएं सूफी मत के सिद्धांतों और व्यवहारों का उल्लेख करती हैं। उन्होंने अपनी भाषा को स्वयं हिंदी कहा है और इस संबंध में यह भी लिखा है कि मेरी ये रचनाएं उन लोगों के लिए हैं जो अरबी फारसी नहीं जानते। इनमें शहादतुल हकीकत, खुशनामा और सरहे मरगुबुल कुबूल प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है। अंतिम रचना गद्य में है। इसमें भी सूफी मत के गूढ़ ज्ञान बताए गए हैं। उनकी कविता का उदाहरण यह है। तू कादिर कर सब जग सब को रोजी देवे, तू सबों का दाना बीना सब जग तुझको सेवे। एकस माटी मूली देवे एकस माटी बाज, केतों भीख मंगावे केतों देवे राज। केतों पाट पितंबर देता केतों सर की लाया, केतों ऊपर धूप तलावे केतों ऊपर छाया। केते ज्ञान भगत बैरागी केते मूर्ख गंवार, एक जिन एक मानस कीता एक पुरुष एक नार। उनकी रचनाओं में केवल प्रेम भक्ति या धर्म की बातें ही नहीं है, वरन साहित्य की दृष्टि से भी उन्होंने महत्वपूर्ण रचनाएं हमारे लिए छोड़ी हैं। कदम राव पदम राव के पश्चात दक्कन की दूसरी महत्वपूर्ण अष्टमी नौ सरहार है। इसके लेखक का नाम शाह अशरफ वियाबानी है। यह मसनवी 909 हिजरी सन 1503 से 4 में लिखी गई। इसका विषय करबला की महान घटना है। इसमें 9 अध्याय हैं, जिस पर इसका नाम नौ सरहार है। इस मसनवी पर हिंदी प्रभाव स्पष्ट है। इमाम हुसैन की बहन जैनब का चित्रण, जैनब अहे उसका नाम माथा जानो सूरज बाट, पृष्ठ संख्या 23। अमृत घोले सोना बाय, सरंगा जैसे लंबे बाल, नयन सलोने ज्यो बादाम, याके जानो चांद ललाट, जो कोई देखन भूल जाए चंदर सूरज दोनों गाल। दक्कन की प्रारंभिक रचनाओं में निजामी दक्कनी की प्रसिद्ध मसनवी कदम राव पदम राव का उल्लेख करना अनिवार्य है। इसकी रचना सुल्तान अलाउद्दीन बहमनी 1435 से 57 के काल में हुई। निजामी के विषय में अधिक जानकारी नहीं प्राप्त है। उनकी कविता इस प्रकार है। गुसाई तुम्ही एक दना जिसका उदार, आकाश ऊंचा पाताल धरती तुम्ही बरोबर ना तुम्ही दीनहार, जहाँ कछ ना कोई हता है तुम्ही रजिनहार अंगिये रजिनहार, तू रहनहार पंछे रहनहार तू। मीरा नजी के पुत्र बुरहानुद्दीन जानम भी बहुत बड़े सूफी गिने जाते हैं। इनकी मृत्यु 1582 ईस्वी के लगभग हुई। उन्होंने अपनी रचनाओं की भाषा को किसी स्थान पर गुजरी गुजराती उर्दू कहा है और कहीं दक्कनी। उनकी अधिकतर रचनाएं कविता के रूप में मिलती हैं और सभी तसव्वुफ के विषय से संबंध रखती हैं। उनकी कविताओं को बहुत सा भाग यूरोप और हैदराबाद के पुस्तकालयों में मिल गया है, जिसके अध्ययन से पता चलता है कि उनकी भाषा सरल है और उनकी कविताएं विषय के गंभीर होने पर भी काव्य सौंदर्य से परिपूर्ण हैं। उनकी पुस्तकों में सुख सहेला, वसीयतुल हादी, इरशाद नामा प्रसिद्ध हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित शेर देखे जा सकते हैं। ये रूप प्रगट आप छिपाया, कोई न पाया अंत, माया मोह में सब जग बांधिया क्यों कर सूझे पंत। बाज आ कहे अपनी बूझ, मालूम नहीं उसकी सूझ, एक जमा सब पकड़िया वार, जो के बीच थे निकलया झाड़। कांट छांट फल और फूल, शाख वर्ग सब देख उसूल, ना इस खालिक मखलूक कोए जैसा तैसा समझा होए। पृष्ठ संख्या 24। बुरहानुद्दीन जानम हिंदी छंदों का प्रयोग करते थे और अपनी बात समझाने के लिए प्रचलित हिंदू मुस्लिम कथाओं से काम लेते थे। उनकी गद्य रचनाएं भी मिलती हैं जिनमें कलमतुल हकायक सबसे अधिक प्रसिद्ध है। शाह बुरहान के सुपुत्र और उत्तराधिकारी अमीनुद्दीन आला हैं। वह भी अपने पूर्वजों के बताए हुए मार्ग पर चले और तसव्वुफ में अपनी रचनाएं छोड़ गए हैं। उनकी मृत्यु 1675 ईस्वी में हुई। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं की हैं, जिनके अध्ययन से यह मालूम होता है कि वह अपने पिता तथा बाबा से बड़े कवि थे। उनकी गद्य रचनाएं भी उनकी कविता ही की भांति महत्व रखती हैं। हिंदबामा और रमुजुस सालकिन उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना है। इस संबंध में यह याद रखना आवश्यक है कि जितनी रचनाएं हमको पुराने लेखकों के नाम से मिलती हैं, उनके विषय में निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि वे उन्हीं की हैं, पर जहाँ तक आज की खोज पहुंची है, उन्हीं के आधार पर ये बातें कही जा रही हैं। जब कभी उर्दू साहित्य का कोई विस्तृत इतिहास लिखा जाएगा, उस समय उनकी रचनाओं, उनकी भाषा और उनके विचारों पर विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा। अमीनुद्दीन आला की गद्य रचनाओं में गजे मकफफी और वजूदिया बहुत मशहूर हैं। इनमें भी हिंदू मुस्लिम सूफी विचारों का ऐसा समन्वय मिलता है कि एक दूसरे के धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों को पूरी तरह अलग करना बहुत कठिन है। जैसा कि कहा जा चुका है, आदिल शाही बादशाहों में से कई एक स्वयं उर्दू में लिखते पढ़ते थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय 1580 से 1626 ईस्वी है। वह केवल दक्षिणी भाषा और उसकी कविता से प्रेम नहीं रखता था, बल्कि भारतवर्ष की संगीत कला में भी निपुण था। उसने भारतीय रागों पर आधारित एक कविता नवरस के नाम से लिखी है, जिसकी विशेषता यह है कि एक ओर तो यह संगीत शास्त्र की दृष्टि से एक अनुपम कृति है, दूसरी ओर साधारण दक्षिणी उर्दू को छोड़कर इब्राहिम ने इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कहा जाता है कि जब उसने यह पुस्तक लिखने का विचार किया, उत्तर भारत से विद्वानों को बुलाकर पहले इस भाषा का अध्ययन किया, उसके पश्चात इस पुस्तक की रचना की। यह बात स्पष्ट है कि उसकी ब्रज उसी युग की उत्तर भारत की ब्रज से भिन्न है, क्योंकि उसने जगह जगह अरबी फारसी शब्दों से ही काम लिया है। यह पुस्तक 16वीं शताब्दी के अंत या 17वीं शताब्दी के आरंभ में लिखी गई होगी। नवरस की भूमिका फारसी के सुप्रसिद्ध कवि और लेखक जहूरी ने लिखी, जो आज शेह नस्त्र के नाम से फारसी की क्लासिकल पुस्तकों में गिनी जाती है। इस काव्य संग्रह को डॉक्टर नज़ीर अहमद ने किताबे नवरस के नाम से प्रकाशित किया है और अंग्रेजी में भी टीका छप गई है। इसके अध्ययन से यह बात स्पष्ट होती है कि 16वीं शताब्दी में हिंदू मुस्लिम सभ्यता का समन्वय बड़ी तेजी से हो रहा था। इन कवियों के यहाँ कृष्ण, लक्ष्मी, सरस्वती का उल्लेख भी उसी प्रकार से होता है, पृष्ठ संख्या 25, जैसे मुस्लिम महात्माओं का। इब्राहिम के राज दरबार की समस्त व्यवस्था उर्दू में होती थी और बहुत से कवि उसके दरबार से संबंधित थे। इब्राहिम के बाद मोहम्मद आदिल शाह राज सिंहासन पर बैठा। वह और उसकी धर्म पत्नी दोनों को कवियों से अत्यंत प्रेम था और बहुत से कवि उसके चारों ओर एकत्रित हो गए थे, जिनमें रुस्तमी, मलिक, खुशनूद और दौलत शाह, अब्दुल और मुकामी के नाम याद रखने योग्य हैं। रुस्तमी फारसी और उर्दू दोनों में कविताएं लिखता था। अब उसकी केवल एक लंबी कविता खावरनामा मिलती है। यह प्रबंध काव्य के रूप में 24,000 शेरों का एक विशाल ग्रंथ है, जिसे उसने केवल 1.5 वर्ष में पूरा कर लिया था। वास्तव में यह एक फारसी कविता का अनुवाद है, परंतु रुस्तमी ने उसको ऐसी सुंदरता से अपनाया है कि यह उसी की चीज़ मालूम होती है। यह रचना उसने मोहम्मद आदिल शाह की धर्मपत्नी के अनुरोध पर तैयार की थी। इसके लिखने का समय लगभग 1649 ईस्वी है। उसकी भाषा सरल और उसके लिखने का ढंग मनोहर है। इसी प्रकार मलिक खुशनूद अपनी मसनवी हस्तविहिष्ट के नाम के लिए प्रसिद्ध है। यह कविता अमीर खुसरो की एक फारसी रचना पर आधारित है। इसकी भाषा बहुत सुगम नहीं है। अब्दुल की मसनवी इब्राहिम नामा जो उसके दरबार की प्रशंसा में लिखी है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उसमें बीजापुर की सभ्यता के जीवित चित्र सामने आ जाते हैं और कविता ऐतिहासिक महत्व ग्रहण कर लेती है। मुकीमी फारसी कवि था, परंतु उसने एक हिंदी लोक कथा चंद्रबदन और महियार बड़ी रोचक साहित्यिक शैली में लिखी है। सन 1656 ईस्वी में अली आदिल शाह द्वितीय गद्दी पर विराजमान हुआ, वह भी कवि था और उसके युग में बीजापुर के सर्वोत्तम कवि नुसरती का बोलबाला हुआ। बादशाह शाही के नाम से लिखता था। उसका काव्य संग्रह हिंदी और उर्दू दोनों में कुलियाते शाही के नाम से छप चुका है। नुसरती एक महान कवि है, पर उसके बारे में इस समय तक अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। कहा जाता है कि उसका नाम मुहम्मद नुसरत था और वह एक ब्राह्मण परिवार से संबंध रखता था। इस बात को बिल्कुल ठीक नहीं माना जा सकता, क्योंकि नुसरती ने अपनी कविताओं में गुलबर्गा के प्रसिद्ध सूफी गेसु दराज की चर्चा की है और यह भी कहा है कि मेरी कई पीढ़ियां उनका नाम जपती चली आ रही हैं। हो सकता है कि बहुत पहले उनका वंश क्रम किसी ब्राह्मण परिवार से मिल जाता हो। नुसरती ने 3 पुस्तकें लिखी हैं और सब मसनवी के रूप में हैं। इनमें से 2 गुलशन-ए-इश्क और अलीनामा बहुत प्रसिद्ध हैं और प्रकाशित हो चुकी हैं। उसकी तीसरी काव्य कृति तारीखे सिकंदरी का पता अभी थोड़े ही दिन पहले चला है। कुछ विद्वानों का विचार है कि यह नुसरती की रचना नहीं है। गुलशन-ए-इश्क में मनोहर और मधुमालती के प्रेम की कहानी कही गई है। यह प्रेम कथा दक्षिण भारत पृष्ठ संख्या 26 में बहुत प्रचलित और लोकप्रिय थी और कई कवि और लेखक फारसी और हिंदी में इसे लिख चुके थे, परंतु नुसरती ने उसे जिस प्रकार लिखा है उससे ज्ञात होता है कि उसने इसमें नवीन बातें जोड़कर उसे अपना लिया है। यह मसनवी ईरान की क्लासिकल मसनवियों के आधार पर लिखी गई है। उसकी दूसरी काव्य कृति जो पहले से भी अधिक सुगम एवं श्रेष्ठ कृति है, अलीनामा है। इसमें अली आदिल शाह द्वितीय की जीवन कथा को बड़े विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। इसे पढ़कर पृथ्वीराज रासो और ऐसी ही अन्य गाथाओं की ओर ध्यान जाता है, क्योंकि इस लंबी कविता में भी नुसरती ने चंद्रवरदाई की तरह अपने बादशाह के जीवन के सभी अंगों का चित्रण बड़ी सुंदरता और उल्लास से किया है। उस समय दक्षिण भारत में मुगलों, मराठों, आदिलशाहियों, कुतुबशाहियों में शक्ति प्राप्त करने के लिए बराबर संघर्ष चल रहा था। अलीनामा के अध्ययन में उन संघर्षों का जीता जागता चित्र आँखों के सामने आ जाता है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए धर्म के आधार पर संगठन नहीं किया जाता था, बल्कि स्थानीय सुविधाओं को देखते हुए एक दूसरे से मित्रता पैदा की जाती थी। नुसरती की यह काव्यकृत उर्दू की श्रेष्ठ कथाओं में है। साहित्यिक महत्व के अतिरिक्त इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। यह उच्च कोटि की रचना दक्षिण में होने के कारण वह स्थान ग्रहण नहीं कर सकी है जो इसे मिलना चाहिए। नुसरती में चरित्र चित्रण की असाधारण शक्ति थी और विशेषकर जब वह युद्ध और संग्राम क्षेत्र का वर्णन करता है तो उसकी काव्य रचना की शक्ति और बढ़ जाती है। नुसरती की तीसरी रचना तारीखे सिकंदरी 1687 ईस्वी में बीजापुर के विनाश या नुसरती की मृत्यु के कारण अधूरी रह गई। नुसरती को वीर रस और श्रृंगार रस दोनों प्रकार की कविताएं लिखने पर अधिकार प्राप्त था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने बीजापुर पर विजय प्राप्त करने के बाद नुसरती को मलिकुश्शुअरा कविराय की उपाधि दी। यह बात ठीक नहीं जान पड़ती, क्योंकि नुसरती की मृत्यु 1684 ईस्वी में हुई। उसकी भाषा सरल अवश्य है, परंतु वह फारसी अरबी शब्दों का प्रयोग अधिक करता है। दूसरे कवियों की भांति वह भी अपनी भाषा को हिंदी ही कहता है। उदाहरण के लिए मनोहर मधुमालती के कुछ शेर लिखे जाते हैं। उधर साथ थी माँ के मधुमालती, इधर माँ के संगात चंपावती। बहुत दिनों को जिस वक्त बिछड़े मिले, एकर एक लगाए चंगुल कर गले। उनु क्यों सखियाँ चक सौ साथ थीं, इनु के कने भी उसी धात थी। नुसरती ने कसीदे और गजलें भी लिखी हैं और कई आलोचकों ने उसे उर्दू कसीदे का पहला कवि भी माना है, परंतु सच यह है कि उसका महत्व उन्हीं रचनाओं से है जिनका उल्लेख ऊपर हुआ है। पृष्ठ संख्या 27। बीजापुर के प्रसिद्ध कवियों में हाशमी का नाम भी लिया जाता है। उनके संबंध में कुछ अधिक मालूम नहीं है। कहा जाता है कि वह दोनों आँखों का अंधा था और उसका बड़ा आदर सम्मान होता था। उसकी मृत्यु 1697 ईस्वी में हुई। उसकी प्रसिद्ध रचना यूसुफ जुलेखा है, जिसमें लगभग 12,000 शेर हैं। यह मसनवी फारसी की एक प्रसिद्ध रचना पर आधारित है। हाशमी एक अच्छा कवि था। उसकी भाषा सरल और लिखने का ढंग सुंदर है। यह भी कहा जाता है कि हाशमी ने हिंदी कवियों के ढंग पर अपनी कई कविताओं में स्त्रियों की ओर से पुरुषों के प्रति प्रेम और विरह की भावना प्रकट की है। किंतु यह हो सकता है कि प्रेम कथा में जहाँ नारी की ओर से कुछ कहने की आवश्यकता हुई है, वहाँ उसकी भाषा स्वभावतः सरल और मधुर हो गई है। कुछ आलोचकों का यह भी विचार है कि वह रेखती का जन्मदाता है, पर यह भी संदेहजनक है। इस स्थान पर केवल कुछ प्रसिद्ध कवियों ही का उल्लेख किया जा सकता है। वैसे बीजापुर के राज और दरबार में बहुत से कवि थे, जिनकी रचनाएं भारतवर्ष और यूरोप के पुस्तकालयों में मिलती हैं। बीजापुर की भांति गोलकुंडा में भी उर्दू साहित्य की बड़ी उन्नति हुई और लेखकों का एक बड़ा समूह एकत्र हो गया। गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश ने 1508 ईस्वी में एक स्वाधीन राज्य स्थापित किया और वहाँ के कई शासकों ने उसे एक सबल और प्रगतिशील राज्य बनाने में बड़ा भाग लिया। उर्दू साहित्य के विकास की दृष्टि से यहाँ का 16वीं शताब्दी का अंतिम जमाना महत्वपूर्ण है। इस वंश के 8 बादशाहों में अंतिम 4 स्वयं उर्दू के बड़े कवि और कवियों के आश्रयदाता थे। गोलकुंडा का 5वां बादशाह मुहम्मद अली कुतुब शाह 1580 ईस्वी में राज सिंहासन पर बैठा। वह उर्दू का एक महान कवि था। कहा जाता है कि उसने 1 लाख से अधिक शेर कहे, जिनमें से अधिक दक्षिणी उर्दू में हैं, कुछ फारसी में और कुछ तेलुगु में। उसकी माँ तेलंगाना की रहने वाली थी और वह उस भाषा से भली भांति परिचित था। तेलुगु में वह तुर्कमान के नाम से कविताएं लिखता था, परंतु अभी तक उसकी तेलुगु कविता के संबंध में कुछ मालूम नहीं हो सका है। वह उर्दू का पहला कवि है जिसके संग्रह की कई पांडुलिपियां भारत और यूरोप के पुस्तकालयों में पाई जाती हैं। उसका काव्य संग्रह थोड़े दिन हुए हैदराबाद से प्रकाशित भी हो चुका है। मुहम्मद कुली एक प्रमुख सैनिक योद्धा होने के साथ साथ एक बड़ा लेखक भी था। उर्दू का वह पहला कवि है जिसके प्रति निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उसने भारतीय जीवन की इंद्रधनुषी प्रकृति में डूबकर कविताएं लिखी। जिस प्रकार उसे मुसलमानों के त्योहारों ईद शबरात इत्यादि से प्रेम है, उसी प्रकार बसंत दिवाली और होली के मनोरंजनों में भी भावपूर्वक सम्मिलित होता है। उसकी कविताएं स्थानीय रंग में इतनी डूबी हुई हैं कि उसके संग्रह से उस समय के धर्म विचार, रहन सहन, आमोद प्रमोद और जीवन की अन्य समस्याओं के विषय में बहुत कुछ पृष्ठ संख्या 28 ज्ञात हो सकता है। उसने अपनी 12 प्यारियों प्रेमिकाओं की सराहना में बहुत सी कविताएं लिखी हैं। उनके नख शिख और सुंदरता का वर्णन हिंदी और संस्कृत श्रृंगार रस कवियों की याद दिलाता है। कहा जाता है कि बादशाह होने से पूर्व अपनी जवानी में उसे भागवती नामक किसी स्त्री से प्रेम हो गया था। सिंहासन ग्रहण करने पर उसने उससे विवाह कर लिया और हैदर महल के नाम से संबोधित करके उसी के नाम पर हैदराबाद का नगर बसाया। उसकी कविताओं में भाग्यमती के प्रति उसके अथाह प्रेम का पता मिलता है। उसके जीवन की सभी घटनाएं उसमें जगह पाती हैं। उसकी रचनाओं में देश के फलों फूलों रीति रिवाजों का वर्णन देखकर इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि दक्षिण भारत में हिंदू मुस्लिम संस्कृति का संगठन कितने आकर्षक ढंग से हो रहा था, और केवल साधारण लोग नहीं, बादशाह भी उससे प्रभावित थे। कुली कुतुब शाह ने गजल, कसीदा, मसनवी, मरसिया आदि सभी काव्य रूपों में रचनाएं की हैं। उसकी इन कृतियों के विषय भी अनेक हैं। आधुनिक काल के कवियों की तरह उसने अलग-अलग विषयों पर भी कविताएं लिखी हैं, जिनके अध्ययन से ज्ञात होता है कि वह हिंदुस्तानी भावनाओं और विचारों को फारसी अलंकारों से सजाकर प्रस्तुत करने की क्षमता भी रखता था। जिस प्रकार उसके विषय और विचारधारा में भारतीयता मिलती है, उसी प्रकार उसकी भाषा उस हिंदुस्तानी से निकट है जो हिंदी भी है और उर्दू भी। यह तो नहीं कहा जा सकता कि उसने उत्तर भारत के हिंदी कवियों का अध्ययन किया था या नहीं, परंतु हिंदी उपमाएं, अलंकार आदि देखकर यह अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है कि वह उनसे अपरिचित न था। वैसे तो लगभग उसका भी वही काल है जो तुलसीदास, मीराबाई और सूरदास का था। उर्दू के इस प्रथम बड़े कवि की रचनाएं प्राकृतिक सौंदर्य रखती हैं। उसकी भाषा सरल तथा सुगम है और भाषा विज्ञान की दृष्टि से उसका अध्ययन अत्यंत उपयोगी है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित शेर पर्याप्त होंगे। पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज इक तिल जिया जाए ना, नहीं इश्क जिनको बड़ा को रहे, कंधी उससे मिल वैसिया जाए ना, कुतुब शाह न दे मुझ दीवाने को पंद, दीवाने को कुछ पंद दिया जाए ना, है इश्क हर एक धात हर एक दिल में प्यारा, मुझ इश्क प्यारे का अहे जीव का आधारा। पृष्ठ संख्या 29। बिन सैर तुम सारी कलियां सूख रही हैं, टुक आंखें करो गश्त चमन जी उठे सारा। रुख एक है पर एक कधन लाख चमन है, लख जोत है हर ठार वले एक रतन है, किस ठार में दिशता नहीं हर ठार है भरपूर, देखने को सकत कहाँ उसे बस एक नयन है। मुझ इश्क गिरी आग का एक चिनगी है सूरज, इस आग के शोले का धुआं सात गगन है। मुहम्मद कुली के वंश में गोलकुंडा के तीन अंतिम बादशाह भी अच्छे कवि हुए हैं। उसका भतीजा मुहम्मद कुतुब शाह स्वयं एक बड़ा कवि और कवियों का आश्रयदाता था। उसका संग्रह भी प्राप्त हो गया है, जिसके अध्ययन से पता चलता है कि वह भी अपने चाचा की तरह हर प्रकार की कविताएं लिख सकता था। उसकी भाषा में वही सरलता, रसीलापन और प्रवाह पाया जाता है जो कुली कुतुब शाह के यहाँ मिलता है। उसकी कविता भी स्थानीय रंग और उपमाओं से भरी हुई है। कविताओं में उसका उपनाम जिल्लुल्लाह था। कई बड़े बड़े कवि उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। वह 1611 ईस्वी में सिंहासन पर विराजमान हुआ था और 1624 ईस्वी में उसका देहांत हो गया। फिर मुहम्मद कुतुब शाह का बेटा अदुल्लाह कुतुब शाह गद्दी पर बैठा। वह भी कवि था और उसकी कविताओं का संग्रह भी मौजूद है। उसकी रचनाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी उसके पूर्वजों की थी, परंतु उसके युग में भी कुतुबशाही राज्यों के कई प्रसिद्ध कवियों को संरक्षण मिलता रहा। उसके दरबारी कवियों में गवासी, कुतवी, इब्ने निशाती, तबई, जुनैदी और अमीन प्रमुख हैं। इस वंश का अंतिम बादशाह अब्दुल हसन तानाशाह था। उसका अधिकांश समय मुगल सेनाओं का मुकाबला करने में बीता, यहाँ तक कि 1686 ईस्वी में औरंगजेब के हाथों गोलकुंडा राज्य का विनाश हो गया। तानाशाह भी कवि था, परंतु इसका कोई काव्य संग्रह नहीं मिलता। इसका कारण कदाचित यह जान पड़ता है कि उसकी आयु के अंतिम वर्ष मुगल कारागार में व्यतीत हुए और संग्रह तैयार नहीं हो सका। जैसा कि ऊपर के विचारों से स्पष्ट होगा, गोलकुंडा में उर्दू काव्य की बहुत उन्नति हुई। बादशाह स्वयं उर्दू में लिखते और उर्दू में लिखने वालों का मान बढ़ाते थे। गद्य और पद्य की अनेक शाखाओं में बहुत काम हुआ और कुछ रचनाएं तो ऐसी तैयार हो गई कि जिन्हें उर्दू के छोटे से छोटे इतिहास में भी एक उच्च स्थान दिया जाएगा।